चौथा, बर्मा पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव। मलाया, सुमात्रा, जावा आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इस्लाम का प्रचार हो जाने के कारण भारतीय धर्मों का लोप हो गया था, पर बर्मा के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पाली भाषा का वहाँ अध्ययन अध्यापन होता है और वहाँ के लोग बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मंतव्यों को मानते हुए उसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं जैसे कि प्राचीन समय में भारतीय बौद्ध किया करते थे। पर पौराणिक हिंदू धर्म का अब बर्मा से लोप हो चुका है। किसी समय वहां शैव और वैष्णव धर्मों का भी प्रचार रह चुका है। यह पुरातत्व संबंधी अवशेषों द्वारा प्रमाणित है। 7वीं सदी के बाद भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था और बाद में वह इस देश से प्रायः लुप्त ही हो गया। पर बर्मा में न केवल वह प्रचलित ही रहा, अपितु उसके साहित्य तथा दर्शन में निरंतर विकास भी होता रहा। बहुत से पाली ग्रंथ बर्मा में लिखे गए हैं और वहाँ के स्थविर और विद्वान बौद्ध दर्शन तथा पाली साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। पाली भाषा उसी तरह से भारतीय भाषा है जैसे कि संस्कृत है। बर्मा में उसके साहित्य का कितना अधिक विकास हुआ था, इसका एक संकेत 1442 ईस्वी के एक अभिलेख में मिलता है, जिसे कि बर्मा के एक शासनाधिकारी ने उत्कीर्ण कराया था। इस अभिलेख में उस शासनाधिकारी तथा उसकी पत्नी द्वारा बौद्ध संघ को दिए गए दान का वर्णन है। उसने उद्यान, खेत, दास आदि के अतिरिक्त बहुत से ग्रंथ भी संघ को प्रदान किए थे, जिनकी पूरी सूची अभिलेख में विद्यमान है। इस सूची में उल्लिखित ग्रंथों की संख्या 295 है। इनमें बहुत संख्यक ग्रंथ पाली के हैं, पर अनेक ग्रंथ संस्कृत के भी हैं। 15वीं सदी के मध्य भाग में बर्मा के किस साहित्य का अध्ययन हुआ करता था, इस सूची द्वारा यह भली भांति जाना जा सकता है। पर बौद्ध साहित्य के विकास की जो परंपरा भारत में अवरुद्ध हो गई थी, बर्मा में कायम रही। बर्मा के समान लंका सिंघल में भी अस्थवीरवाद का प्रचार था। अतः धार्मिक क्षेत्र में बर्मा का लंका के साथ घनिष्ठ संबंध रहा और वहाँ के स्थविर व बौद्ध विद्वान धर्म के मामलों में लंका के बौद्धों से प्रेरणा प्राप्त करने लगे। पर राजनीति और कानून सदृश विषयों में बर्मा का प्रेरणा स्रोत भारत ही रहा। वहाँ धम्मस्थ नाम के ग्रंथों का संबंध कानून और लौकिक आचार विचार के साथ है। ये ग्रंथ पाली में है और इन्हें वहाँ के कानून का आधार माना जाता है। इनकी रचना मनु, नारद और याज्ञवल्क्य आदि के हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर की गई थी। दक्षिणी बर्मा के अन्यतम राजा भगरू ने 13वीं सदी के अंतिम चरण में धम्मस्थ का संकलन कराया था, जो तलैंग भाषा में था। 16वीं सदी में बुद्ध घोष ने उसे मनुसार नाम से पाली भाषा में अनुदित किया। इस धम्मस्थ का मनुसार नाम होना ही यह सूचित करता है कि मनुस्मृति या मानव संहिता के आधार पर इसकी रचना की गई थी। धम्मस्थ वर्ग के जो अनेक अन्य ग्रंथ 17वीं और 18वीं सदियों में बर्मा में लिखे गए, उनके साथ भी मनु का नाम जुड़ा हुआ है। इसका कारण यही है कि बर्मा का कानून तथा विधान शास्त्र भारत के प्राचीन स्मृति ग्रंथों पर आधारित था। बर्मा पर भारत का प्रभाव इतना अधिक रहा है कि वहाँ के कितने ही प्रदेशों तथा नगरों के नाम भारतीय थे। जो भारतीय उपनिवेशक वहाँ गए, उन्होंने अपने नगरों तथा बस्तियों आदि के वे नाम रखे जिनसे वे भारत में परिचित थे। इसीलिए बर्मा में भी प्रदेशों के नाम अवंती, गांधार, कंबोज, अपरांत और अस्तांजन आदि रखे गए और वाराणसी, चंपानगर, कुसुमपुर, मिथिला, पुष्करावती, राजगृह, संकाशाय, वैशाली आदि नाम की नगरियां वहां बसाई गई। श्री क्षेत्र, द्वारवती, हंसावती आदि जिन नगरियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके नाम भी भारत से ही लिए गए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लोग भारत में जाकर बर्मा में बसे, वे अपने मूल देश के उन स्थानों को नहीं भूल सके जिनका भगवान बुद्ध के जीवन के साथ संबंध था। उन्होंने अपने नए देश में अनेक स्थानों का संबंध बुद्ध से जोड़ दिया ताकि उन्हें भी उसी प्रकार से पवित्र समझा जा सके जैसे कि भारत में बोधगया, सारनाथ, कपिलवस्तु आदि पवित्र माने जाते हैं। उन्होंने कल्पना की कि बुद्ध बर्मा भी गए थे और उनके जीवन के साथ संबंध रखने वाली अनेक घटनाएं बर्मा में घटी थीं। अपने नए देश के अनेक राज्यों के राजवंशों का संबंध भी उन्होंने शाक्य कुल के साथ जोड़ दिया क्योंकि बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ था। राजा अशोक मौर्य का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी राजा के समय में देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महान उद्योग हुआ था। इसी दशा में बर्मा के बौद्ध अशोक और उसके कुल को भी कैसे भूल सकते थे। उत्तरी बर्मा में इरावदी नदी के तट पर एक प्रदेश को मौर्य नाम भी दिया गया और उन स्थानों को भी बसाया जाने लगा जिन्हें कि अशोक के समय के बौद्ध प्रचारकों ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। बर्मा में बसे हुए भारतीयों को अपने मूल देश के प्रति इतना अधिक ममता थी कि उन्होंने बर्मा में एक ऐसे नए भारत के निर्माण का प्रयत्न किया जो असली भारत से मिलता जुलता हो। पगान अरिमर्दनपुर के राजाओं ने बर्मा में जिन स्तूपों, विहारों और मंदिरों आदि का निर्माण कराया था वे भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार बनाए गए थे। राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित स्वेजिगान का स्तूप एक विशाल ठोस महास्तूप है जिसके चारों ओर देवताओं के 30 मंदिर हैं। इन्हें महास्तूप की पूजा करता हुआ प्रदर्शित किया गया है। स्वेजिगान के महास्तूप तथा समीपवर्ती मंदिरों का निर्माण भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार किया गया था। उस समय बौद्ध स्थविर व भिक्षु बड़ी संख्या में भारत से बर्मा जाया करते थे और बर्मी भिक्षु भी तीर्थ यात्रा आदि के लिए भारत आते रहते थे। बर्मा की एक पुरानी कथा के अनुसार बर्मा का एक महानाविक प्रतिवर्ष भारत जाया करता था और वाराणसी से मूर्तियां खरीदकर उन्हें पेगू में बेच देता था। यह स्वाभाविक था कि मूर्तियां बर्मा की मूर्तिकला को प्रभावित करें। राजा केन जित्था ने जिस आनंद विहार का निर्माण कराया था वह पूर्णतया भारत के विहारों की अनुकृति है। इस विशाल विहार के प्रत्येक पार्श्व की लंबाई 175 फीट है और इनके चारों ओर जो आंगन है वो 564 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा है। विहार के बीच में 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विशाल बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापित है जो 31 फीट ऊंची है। विहार की पहली परिक्रमा की दीवारों में 80 गवाच हैं जिनमें बुद्ध के जीवन के प्रारंभ से बुद्धत्व प्राप्ति तक की घटनाएं अंकित हैं। दीवारों और विहार की ढलानों पर कलई वाली मिट्टी की रूपावलियां बनाई गई हैं। दूसरे तल पर मिट्टी की चमकीली रूपावलियां हैं जिनमें 550 जातक कथाएं अंकित हैं। सारे मूर्ति अंकनों की संख्या 1472 है। इस विहार पर भारत का कितना प्रभाव है यह फ्रेंच विद्वान दुरो इजल के इस कथन से स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन वास्तु शिल्पियों ने आनंद विहार का निर्माण किया था वे भारतीय ही थे। शिखर से लेकर आधार तक इस विहार में जो कुछ भी है सब भारतीय है। इसके गलियारों में जो प्रस्तर मूर्तियां हैं और इसके दीवारों पर तथा ढलानों पर की मिट्टियां जो रूपावलियां हैं सब पर भारत की प्रतिभा तथा शिल्प की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस आनंद विहार का निर्माण बर्मा की राजधानी में किया गया था पर इसे एक भारतीय विहार ही माना जा सकता है। पगान अरिमर्दनपुर कि चारों ओर का 100 वर्ग मील का प्रदेश ऐसा है जिसमें पुराने विहारों तथा मंदिरों आदि के भग्नावशेष सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। अनुमान किया गया है कि जिन मंदिरों आदि के ये अवशेष हैं वे संख्या में 1000 के लगभग थे। इनमें से बहुसंख्यक तो अब पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं। उन्हें देखकर यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है कि आनंद विहार के समान इनका निर्माण भी भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार किया गया था। इनका काल भी 11वीं और 12वीं सदियों का माना जाता है। पगान के अवयदान और कुवयोविक विहारों की भित्ति चित्रों में बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ साथ ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश आदि को प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत के समान बर्मा में भी धार्मिक समन्वय की सत्ता थी और वहां के लोगों की वृत्ति भी सहिष्णुता की थी।